अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको सेंटर फॉर पॉजिटिव साइकोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा नाम मीरा मिर्शाद है और आज हम बात करेंगे पॉलिगमी एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर। हमारा टॉपिक थोड़ा सा जो है वो यूनिक है इन अ वे कि आपने पॉलिगमी या एक से ज्यादा शादी करना जो है वो रिलीजियस और लीगल कॉन्टेक्स्ट में तो काफी बार उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट, डिबेट और डिस्कशन होते हुए सुनी होगी, बट उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट होता है इसके लिए जो है वो आई थिंक इट्स अ यूनिक अटेम्प्ट। और आज मैंने दावत दी है बहुत ही काबिल एहतराम जावेद अहमद गामदी साहब। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बींग ऑन द शो एंड आई एम वेरी हम्बल्ड। और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आप शादी जो हम का इंस्टीट्यूट है उसको कैसे देखते हैं, कि वो जहनी आसूदगी का बाइस है या नहीं है, क्या वो एक कॉम्प्रोमाइज है, क्या वो शादी का जो है वो बेसिक मकसद क्या है सोसाइटी में या किसी भी माशरे में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंस्टीट्यूशन अल्लाह ताला का कायम करता है और इसके कायम करने की वजह ये हुई है कि इंसान को पैदा करने की अल्लाह ताला की स्कीम इसका तकाजा करती है। अगर ये पैदाइश की स्कीम ना होती तो आज़ादाना जिनसी ताल्लुक ही मौजू था। अल्लाह ताला ने चूंकि ये फैसला किया कि वो इंसानों को नातवां हालत में पैदा करेगा, बहुत छोटे बच्चे ना खुद उठ सकते ना बैठ सकते ना खा सकते ना पी सकते ना अपनी कोई हाजत पूरी कर सकते, 10 20 15 घंटे के लिए तनहा छोड़ दें तो जिंदगी खतरे में पड़ जाए। इस तरह की सूरत हाल में चूंकि इंसान को दूसरे इंसानों की आगोश में डाला गया, इसलिए ये जरूरी हुआ कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए जो बहुत मुहकम हो, जिसके बाहमी रवाबित बड़े मुहकम हों, जिससे रिश्ते पैदा हों। 14 15 साल बल्कि अब तो इससे कहीं ज्यादा तालीम, तरबियत, परदाख, परवरिश, इसके लिए पूरा खानदान सरगर्म होता है। और फिर उसके बाद इंसान के साथ एक दूसरा हादसा ये है कि वो एक ही हालत में नहीं रहता, बतदरीज जवानी के अय्याम गुजार के बूढ़ा होना शुरू हो जाता है और फिर एक मरतबा वही हालत पैदा हो जाती है जो बच्चे की हालत थी, वही नातवानी, वही बेबसी। और उसी तरह से एक एक दिन गिन के वो अपनी कब्र की तरफ बढ़ता है। ये सूरत हाल क्योंकि इंसान के साथ अल्लाह ताला ने अपनी स्कीम के लिहाज से रखी है, तो इसके लिए जरूरी था कि माँ बाप का रिश्ता कायम किया जाए, जिस रिश्ते में मोहब्बत भी हो, नफसियाती तस्कीन भी हो, जिसमें कुछ भलाई भी हो, जिसमें माली अखराजात की जिम्मेदारी भी हो। तो इतनी चीजों को सामने रख कर अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि इंसान अपने लिए ये डिसिप्लिन कबूल करे। ये बुनियादी तौर पर बच्चे की पैदाइश, परवरिश, और बच्चे की जगह आप इंसान को रख लें, यानी इंसान की पैदाइश, परवरिश, परदाख, तरबियत के लिए कायम किया गया है। तो ये बड़ा मुकद्दस इदारा है, इसमें अदना दर्जे में भी कोई खलल पैदा हो जाए तो ये इंसानियत के लिए तबाहकुन हो सकता है। यानी क्योंकि इंसान अपनी पैदाइश की इस स्कीम को बदलने पर कादिर नहीं है, तो इसलिए इस इदारे की भी उसको हमेशा जरूरत रही है और हमेशा जरूरत रहेगी। लेकिन इस इदारे में अल्लाह ताला ने एक दूसरा पहलू ये रखा कि इंसानों की जबिल्लत में ये चीज़ रख दी कि वो इस इदारे के लिए एक फितरी कशिश रखते हैं। यानी बच्चे को पैदा करना भी एक जबिल्ली तकाजा बना दिया और जिनसी ताल्लुक को भी बहुत बायस कशिश, बहुत पाए से लज्जत बना दी। इन दोनों चीजों ने मिलके इसको महज एक फरीजा ही नहीं रहने दिया, बल्कि इसमें मोहब्बत, मुद्दत, तस्कीन, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के दाइयात को सब पैदा कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, इसको मुख्तलिफ जहतों से देखना चाहिए। यानी असलन तो ये इंसान की पैदाइश, परवरिश और परदाख्त के लिए कायम किया गया है, लेकिन फिर बहुत सी दूसरी चीजें इसके साथ शामिल कर दी हैं ताकि ये महज एक पाबंदी, महज एक फरीजा, महज एक मुसीबत ना बन के रह जाए। लोग इसको एंजॉय करें, इससे मोहब्बत करें और इससे तस्कीन हासिल।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर मैं इसी चीज से अगला सवाल कनेक्ट करना चाहती हूँ कि अगर शादी का असल या बुनियादी फंडामेंटल मकसद ये है कि हम परवरिश करें आने वाली नस्लों की और इंसान की जो है वो एक होलिस्टिक परवरिश या तरबियत हो सके, ऐसी सूरत में आप एक से ज्यादा बीवियां रखने के कॉन्टेक्स्ट में या पॉलीगमी के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से इसी इस मकसद को पूरा होते हुए देखते हैं? और अगर एक औरत जो कि चाहे पार्टी 1 है या पार्टी 2 है या पार्टी 3 है, वो अगर खुद अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में है, किसी खौफ में है कि अगर ऐसी शादी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसकी कोई प्री रेक्विजिट नहीं है कि जब चाहे जब जिसको ख्याल आए कि जी अब मुझे जो है वो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या तीसरी शादी कर लेनी चाहिए, ऐसी सूरत में एक अनसर्टेनिटी में कि आप किसी भी वक्त रिप्लेस किए जा सकते हैं, और ऐसी औरत या ऐसा जो कोई भी जो फर्द है या चाहे पार्टी 2 है या 3 है, वो कैसे ये अपनी जिम्मेदारी या अपना ये फरीजा सर अंजाम दे सकते हैं उस साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेन के साथ?
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसलिए किसी इंसान को इसके लिए एकदम भी नहीं करना चाहिए। सही घर एक ही मियाँ बीवी से बनता है, बच्चों का एतमाद भी एक मियाँ बीवी से हासिल होता है। माँ और बाप के रिश्ते में अगर तफरीक पैदा हो जाए तो ये बच्चों के लिए भी, उनकी परवरिश के लिए भी, उनकी जहनी सेहत के लिए भी सख्त खतरे का बायस बन जाती है। तो इस वजह से पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि लोग इस इदारे की अहमियत को समझें और इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के इसका हिस्सा बने। माँ भी, या दूसरे लफ्जों में कहिए औरत भी और मर्द भी, दोनों ये समझ कर इसको इख्तियार करें कि हम अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी स्कीम में शामिल होने जा रहे हैं, तो हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर रखना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, हमें अब बच्चों के लिए जीना है। तो ये तरबियत होनी चाहिए माशरे की, लोगों को तवज्जो दिलानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब इंसानियत की इब्तदा की तो बड़े इसरार के साथ फरमाया है कि मैंने एक आदम और हव्वा से इब्तदा की। यानी ऐसा तो नहीं किया कि एक आदम बनाया और तीन हव्वा बना दी, या चार बना दी, या पांच बना दी। तो एक मर्द और औरत ही से ये खानदान का सही रिश्ता कायम होता है, इसी से एतमाद पैदा होता है। वो लोग के जो इसमें बेवफाई इख्तियार करते हैं, गलत रवैया इख्तियार करते हैं, या इस पे तादुद पैदा करते हैं, अक्सरों बेशतर अपने लिए जवानी में भी मुश्किल पैदा करते हैं और अपना बुढ़ापा तो काबिले रहम बना लेते हैं, औलाद का एतमाद भी उसमें खत्म होता है। तो इसलिए करना तो यही चाहिए, यानी यही
जी
बात ठीक है, लेकिन इसके लिए बाज इकदाम की जरूरत है। यानी इसकी जरूरत है कि जिस वक्त शादी हो रही होती है तो उस मौके के ऊपर सिर्फ यही ख्याल ना कर लिया जाए कि शादी आने बजाने हैं, खाना खाना है और घर जाना है। ये सारी बातें उस वक्त जेरे बहस आनी चाहिए, यानी इंसान क्या करने जा रहा है। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप बहुत सी चीजें समझते हैं, एक दूसरे के ख्यालात जानते हैं, और उस मौके के ऊपर औरत को भी हक है कि वो जिन चीजों से डिस्टर्ब हो सकती है, मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनको जेरे बहस ले आए, यानी ये तय कर लिया जाए। कई लोग हैं, आपने देखा होगा कि शादी के मौके के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की, वो खुशी का मौका है, जाएंगे, अगले 2-3 हफ्तों में ये मसला पैदा हो जाता है कि मुझे तो घर अलग चाहिए, ये मसला पैदा हो जाता है कि मैं तो वालदैन के साथ नहीं रह सकता, ये मसला पैदा हो जाता है कि अब तुम फलां वक्त आओगे या फलां वक्त जाओगे। तो असल में किसी इंसान के सोचने का अंदाज क्या है, उसके हालात क्या है, उसकी माशी सूरत हाल क्या है, उसके वालदैन के क्या मामलात है, उसने किसी अकेले घर में रहना है, उसने ज्वाइंट फैमिली में रहना है, ये सब चीजें जो है ये शादी से पहले जेरे बहस आ जानी चाहिए। और हमें इस मामले में जो एक शर्मा शर्मी का अंदाज है वो तर्क कर देना चाहिए। ये संजीदा फैसला है, यानी ये कोई एक पिकनिक मनाने के लिए जाने का फैसला नहीं है, जिंदगी भर का फैसला है। और आप जिस शोबे से ताल्लुक रखती हैं उसमें सबको ये नसीहत करनी चाहिए कि वो खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ ये तमाम चीजें जेरे बहस लाए। तो मेरे नजदीक एक तो ये जरूरी है, और शादी के बारे में ये भी समझना चाहिए कि निकाह की तकरीब में आप जो शराइत भी तय कर लेंगे वो अल्लाह का हुक्म बन गया, जो शराइत भी तय कर लेंगे। तो इन तमाम चीजों को जेरे बहस ले आना चाहिए। दूसरी
बिल्कुल
चीज
सर,
ये है कि रियासत की सतह पर भी कानून साजी अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जिस तरह की कानून साजी की गई है वो पहले ही, हमारा कौमी मिजाज ये है कि हम किसी कानून की पाबंदी करने के आदी नहीं है, लेकिन कानून साजी जिस तरह की गई है उसमें बड़े खलाल है। मैंने देखा कि इस मामले में जो मलेशिया में मैं 10 साल वहां रहा हूँ, उन्होंने कानून बनाए हैं और जिस तरह के कायदे बनाए हैं वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर। तो इसलिए हमारी पार्लियामेंट को भी ये कोशिश करनी चाहिए इस तरह के मामलों को कंट्रोल करें। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि चूंकि इंसान इंसान ही है, वो माहदे भी कर ले, वो वादे भी कर ले, फिर भी ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कि वो खिलाफ वर्जी करता है। तो देखना चाहिए कि खिलाफ वर्जी के असबाब क्या है। आप चूंकि इस शोबे से ताल्लुक रखती हैं तो मैं खुल के ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जिंसी मामलात की सही तरबियत नहीं होती, और
बिल्कुल सर,
उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं मर्द और औरत के दरमियान, मर्दों की नफ्सियात इस मामले में जरा मुख्तलिफ है औरतों से। तो चूंकि जो मसाइल पैदा होते हैं ना, हम उनको कभी मौजू बनाते हैं, ना कभी उन पर गुफ्तगू करते हैं, ना ख्वातीन उन पर गुफ्तगू करना पसंद करती हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बतदरीज एक बुनियादी जबिल्लत का तकाजा तसादम में बदलता चला जाता है और उसको कोई एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं होता। ना वो फैमिली में जेरे बहस आते हैं, ना वो औलाद के साथ जेरे बहस लाए जा सकते हैं। तो इसको भी देखना चाहिए कि असबाब क्या बनते हैं इसके। मेरे अपने 50 साल की पब्लिक लाइफ के तजर्बे में बहुत बड़ा सबब जिनसी मामलात में हम आहंगी ना होना भी बनता है। तो इसलिए इसको अहमियत भी देनी चाहिए और इसकी तरबियत भी करनी चाहिए। और बदर जाए आखिर ये कि ऐसा हो जाए तो औरतों की तरबियत करनी चाहिए कि वो फिर उस मौके के ऊपर घर को बचाने के लिए, औलाद को बचाने के लिए क्या रवैये अख्तियार करें।
जी, और इसी पे अब जो अभी आपने लास्ट पॉइंट जिस पे आपने अपनी बात खत्म की है, मैं इसी से अगला सवाल जो है वो कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन खड़ी हो गई है और उसके बारे में जो है वो आप मेरे से बहुत अच्छे जानते हैं कि पूरी दुनिया में चाहे पाकिस्तान की हम बात करें या दुनिया के किसी भी मुल्क की बात करें, पेट्रियार्की यहाँ मौजूद है, हम इसको वी कैन नॉट गेट अवे विद इट। तो ऐसी सूरत में आपके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसी खवातीन जो इस साइकोलॉजिकल या इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं और उनको जो जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं फॉर दिस स्टेप, जो ये कदम उठाने के पीछे जो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है, उसको सारी चीज को प्रोसेस करना, उसके साथ पीस मेकिंग करना, उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए या जो भी सोशल फेस इमेज को कंटिन्यू करने के लिए क्या करें?
पहली बुनियादी चीज तो हर शख्स को ये जाननी चाहिए, यानी ये जितनी बातें भी मैंने कही हैं ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आप एक गलत चीज को होने से रोकने की कोशिश करें, तालीम देते हैं, तरबियत करते हैं, जिम्मेदारी समझाते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते में जो एक मुहकम पहलू होना चाहिए उसकी वजाहत करते हैं। ये सारी चीज़ें आप बता देते हैं और हर लिहाज से कानून भी अच्छे बना देते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि इसके बावजूद खिलाफ वर्जी के रास्ते लोग निकाल लेते हैं। जब खिलाफ वर्जी हो जाए इस तरह की चीज़ों की तो फिर ये समझना चाहिए, यानी औरतों की ये तरबियत होनी चाहिए कि अब वो इस मामले को कबूल करके आगे बढ़े। यानी ये एक वाकया हो गया है और हमारी ये दुनिया जन्नत के उसूल पर नहीं बनाई गई, ये इम्तहान और आजमाइश के उसूल पर बनाई गई। ये आजमाइश हमको माँ बाप से पेश आ जाती है, ये आजमाइश हमको रिश्तेदारों और आइज़ा से पेश आ जाती है, ये आजमाइश हमको दोस्तों और अहबाब से पेश आ जाती है, ये अपने हुक्मरानों और सियासतदानों से पेश आ जाती है। तो इसलिए इसको एक इम्तहान समझ कर इसकी जहनी तैयारी करना चाहिए। हर खातून को जब वो शादी के बंधन में बनती है तो जहनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए, यानी जितने भी हम इससे बचने के रास्ते निकाल सकते हैं वो तो निकालने ही चाहिए। और कभी भी इसको कोई अच्छी चीज के तौर पर पेश नहीं करना चाहिए कि आप दो शादियां कर लें, चार कर लें, ये बर्बादी का सामान है। खासतौर पर हमारे माशरे में तो खातून की भी तरबियत करनी चाहिए कि अगर ये वाकया हो जाए किसी मौके पर सारे इकदाम के बाद, तो वो फिर इसको अपने लिए मसला न बने। तो बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ इसको खुदा का फैसला समझे। अगर उनकी औलाद है तो अपनी सारी तवज्जोहात का मरकज उसको बनाए, अपने घर को किसी हाल में जहन्नम का नमूना न बनने दें और कोशिश करें कि अपनी इज्जत, अपने वकार को महरूम रखें। जो बेवफाई होनी थी, अगर वो इसको बेवफाई कहती है, वो हो चुकी। जो मसला पैदा होना था वो हो चुका, जब हो चुका है तो उसको एक वाकये के तौर पर तस्लीम करके अपने घर को, अपनी औलाद को, अपने सुकून को, अपनी जिंदगी को, अपने मकासद को बचाने की कोशिश करें। मुझे पेशावर में एक यूनिवर्सिटी की शोबा नफ्सियात की सदर ने अपना खुद वाकया सुनाया ये, और बहुत ही दिलचस्प वाकया है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी मामला इस तरह के देखे थे जिंदगी में, उनमें यही हुआ था कि जजा फजा हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, घर बर्बाद हो गया, औलाद जो है वो बाप के मुकाबले में आ गई, कहीं माँ के मुकाबले में आ गई, और इस तरह से घर का सुकून बर्बाद हुआ। तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी के, और शादी की मोहब्बत, मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे मियाँ एक दूसरी खातून को ब्याह कर घर ले आए, और वो कहती है कि मेरे ऊपर क्यामत की रात गुजरी, और उसके बाद जब मैं सुबह का वक्त हुआ, मैं नमाज के लिए सो तो भी नहीं सकी थी, तो मैंने अपना सर सजदे में डाल दिया और अपने रब से मैंने सबर के लिए दुआ की। उसके बाद मैं उठी और उठ के मैंने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी और फूलों का गुलदस्ता बना के नई आने वाली को भेज दिया। मैं उनसे कहा कि मैं अब तुम्हारी बहन हूँ और हम इसी तरह रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद हमारे घर में सूरत हाल ये है कि मेरी औलाद नहीं हुई, उसके बच्चे हैं, वो उसको खाला कहते हैं, हम उसको बन कहते हैं, और मुझे वो इज्जत मिली उस घर में, वो वकार मुझे हासिल हुआ कि मैं बता नहीं सकती। तो इसलिए इस वाकये के होने से रोकना ही चाहिए, ये कोई ऐसी खुशगवार चीज नहीं है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि एक ही मियाँ बीवी के साथ पुरसकून घर बनता है, एतमाद पैदा होता है, औलाद की अच्छी परवरिश होती है, बुढ़ापा आपका अच्छा गुजरता है, लेकिन अगर किसी मौके पर ये हादसा हो जाए तो फिर इसको मसला बनाने की बजाय जहनी लिहाज से खुशदिली के साथ कबूल करना चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा अगर आप जगह फजा करेंगे, रोएंगे धोएंगे, मारपीट करेंगे, आप अपना घर खराब करेंगे, औलाद को आप बाप के मुकाबले में खड़ा करेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा, वाकया हो गया जो भी हो उसको वापस
बिल्कुल
नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए उसको कबूल करके अल्लाह का फैसला समझकर उसके ऊपर अपने लिए अजर का असबाब पैदा करने चाहिए, तो नतीजा ये होगा तो उस सबर का यहाँ दुनिया में भी सिला मिलेगा और आखिरत में भी सिला मिलेगा।
बिल्कुल सही। मैं वापस थोड़ा आपकी जो पहली बात है प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर वापस जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी स्ट्रेस किया है और आई थिंक ये जो जिस पॉइंट पे अभी आपने बात खत्म की, हमारा ज्यादा फोकस या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है। अगर आप हमारे माशरे में देखें तो हम उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि हम हमें मेरा ख्याल है कि एक आजादी दी हुई है, जो चाहे जो है वो आपके मेल काउंटर पार्ट या फैमिली मेंबर्स कर लें, उस पर आपकी सही नहीं है। तो मैं वापस उस पॉइंट पे लेके जाना चाहती हूँ कि जो लोग अभी हमारे मेल ऑडियंस हमें देख रही है, और आपको पता है कि ये कंज्यूमरिज्म का टाइम है, आई थिंक हैविंग मोर इज लाइक हर चीज में ही हमें जो है वो हम अपनी जिसको कहते हैं ना मियाना रवि को हम भूल चुके हुए हैं। तो उस सूरत में थोड़ी सी उनकी भी जहन साजी के लिए दोबारा इस चीज पर थोड़ा अपना कमेंट दीजिए कि जो शादी है वो आपकी प्राइमरी फोकस उसका सिर्फ ये नहीं है कि आपको आज ये अच्छा लग रहा है तो आप इनके साथ चले चल पड़े, और कल को अगर आपको कोई और अच्छा लग पड़ता है तो आप वहां चल पड़े। सो उस पर थोड़ा सा वापस मैं आपका चाहती हूँ कि कमेंट दोबारा दीजिए, ताकि ये जो हमारा माशरे में सारा फोकस औरत के ऊपर या उसको कहते हैं कि जी आपने घर बचाना है, उसको भी थोड़ा बैलेंस आउट कीजिए कि इट्स एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बोथ पार्टनर्स।
मैं तो इसके बरखिलाफ ये कहूंगा कि मर्द की ज्यादा जिम्मेदारी, अल्लाह ताला ने उसको खानदान के इदारे का सरबरा बनाया है, और जब किसी को ये मनसब दिया जाता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। वो अगर घर में ये खराबी पैदा करता है, अपनी ख्वाहिशात को बेलगाम छोड़ता है, या ये तासुर पैदा करता है कि आज ये और कल वो है, जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, तो वो असल में अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारता है। मैंने ये अर्ज किया है कि पहले शौहर बनना और शौहर बनने के बाद बाप बनना, ये दोनों बड़े जिम्मेदारी के फैसले, यानी ये कोई खेल नहीं है कि आज आप एक खातून को लाए, कल आपको कोई और अच्छी लग गई उसको आप ले आए। आपको समझना चाहिए कि आप यहाँ एक जिम्मेदाराना फैसला कर रहे हैं, अल्लाह ताला की स्कीम में शामिल हो रहे हैं, ये कोई तमाशा नहीं है कि जो आपने लगा रखा हुआ है और इसमें एक के बाद दूसरी पुतलियों को आप नचाते रहेंगे। ये दर हकीकत अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए किए जाने वाला बहुत बड़ा फैसला है। तो हमारे यहाँ शादी ब्याह के मामले को भी या मोहब्बत या फ्रेंडशिप या इजाजत ले के ये कि खुशी का मौका या जिंसी तस्कीन के लिए कानूनी तरीका इस तरह पेश किया जाता है। शादी ये नहीं है। शादी जिस तरह के मैंने आपसे अर्ज किया, ये अल्लाह ताला की स्कीम में अपना किरदार अदा करने का फैसला है। तो हमारे यहाँ बच्चों को भी लड़कों को भी शादी से पहले हर शख्स को इसकी तरबियत देनी चाहिए। लड़कियों को भी ये बताना चाहिए कि आपने अपने लिए कोई महबूब नहीं ढूंढा, और लड़कों को भी ये बताना चाहिए, यानी महबूब होना चाहिए बीवी को और महबूब होना चाहिए शौहर को, लेकिन ये महज एक मोहब्बत का मामला नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदाराना इकदाम है जिसके नतायज निकलेंगे। आपकी अपनी जिंदगी पर उसके असरात होंगे, आपकी औलाद पर उसके असरात होंगे। तो इसलिए इसकी तरबियत करनी चाहिए, इसके लिए इकदामात करने चाहिए, इसके लिए कानून साजी करनी चाहिए। तो मैंने तो आप शर्ज किया है कि हर हर सतह पर, यानी तालीमी इदारों में जब आप निसाबात बनाते हैं तो बताइए लोगों को कि शादी क्या चीज। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन वो क्या है, वो आपकी माशरत में ये शादी का इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। यानी जो आप सियासत बनाते हैं उससे गुरेज करके आदमी जंगल में रह सकता है, लेकिन ये वो इंस्टीट्यूशन है कि जिस पर इंसानियत के बका का इन्हिसार है। तो इस इंस्टीट्यूशन को हम जेरे बहस ही नहीं लाते। हमारे यहाँ शादी ब्याह का मामला जेरे बहस आएगा तो या निकाह की तकरीब जेरे बहस आ जाएगी या तलाक देने का तरीका जेरे बहस आ जाएगा। ये जो दरमियान में सारा अरसा गुजारना है इसको हम कभी मौजू ही नहीं बनाते। तो ये हमारी मौसम का मौजू बनना चाहिए, हमारी तालीम का मौजू बनना चाहिए, वालदैन को अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये कितना जिम्मेदाराना फैसला है। औलाद क्या चीज है, ये औलाद आपने पैदा करनी है तो ये बच्चा पैदा करके फेंक देना नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का मामला है। हमारे यहाँ ये जो जब्त विलादत की बहसें होती हैं वो भी इसी वजह से होती हैं कि हमारा ख्याल है कि बच्चों को पैदा कर देना बस हमारा काम है, उसके बाद बाकी खुदा जाने। नहीं, हमें एक जिम्मेदार बाप की हैसियत से, जिम्मेदार शौहर की हैसियत से, जिम्मेदार माँ की हैसियत से फैसले करने हैं। तो मेरे नजदीक तो सबसे ज्यादा अहमियत इन्हीं प्रिवेंशन की है, यानी आप मामलात को बिगाड़ की तरफ बढ़ने से रोकें, वो जहनी तैयारियों से रुकेंगे, वो नफ्सियाती तैयारियों से रुकेंगे, वो आपकी इल्मी तरबियत से रुकेंगे, और फिर बहुत हद तक उसमें कानून साजी भी होनी चाहिए। मैंने तो यहाँ तक आपसे कहा है कि निकाह के माहदे के मौके के ऊपर भी अपना दिल खोल के सामने रखना चाहिए, बैठ जाना चाहिए लड़के और लड़की को और तय कर लेना चाहिए कि मेरी ख्वाहिशात क्या है, मेरी तमन्नाएं क्या है, मैं तुम्हें क्या चीजें दे सकती हूँ, तुम मुझसे क्या चीजें ले सकती हो, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी है। तो ये सारी चीजें जेरे बहस आए, तय हो, इनके बारे में आप एक दूसरे से बात करें और अगर उनको लिखना चाहें तो लिख लें। तो ये बहुत से इकदाम हैं जो हमारे यहाँ शादी ब्याह ताल्लुकात रवाबित में कुछ तालीमी, कुछ तरबियती, कुछ नफ्सियाती, कुछ कानूनी करने की जरूरत है। ये करने के बाद ये चीज जेरे बहस आती है कि अगर फिर भी किसी आदमी ने किसी जरूरत के तहत या महज इन्हराफ की वजह से या तबीयत की खराबी की वजह से या तनवो केशी की वजह से कर ली दूसरी शादी या तीसरी, तो अब उसके बाद कैसे निपटना। यानी वो एक वाकया होने से पहले आप बहुत सी चीजें करें, हो जाए तो फिर क्या करें, वो मैंने आपसी खिदमत बहस किया है कि फिर सबर का तरीका इख्तियार करें और वकार के साथ और इज्जत के साथ उस मरहले को गुजारे। इस
बिल्कुल सही इस पे मैं एक और भी चीज़ आपकी कमेंट लेना चाहती हूँ कि जिन मुस्लिम ममालिक में इसके ऊपर दूसरी शादी के ऊपर पाबंदी है, उन वो अपने पूरे शरीयत को कैसे जस्टिफाई करते हैं और वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के कल्चर में क्या बैरियर्स हैं जो कि हम ऐसी कानून साजी नहीं कर पाए।
पाबंदियों की वही नौयत है जो हमारे यहाँ है, यानी कुछ शरायत कुछ हदूद, इजाजत लेनी है, आपने अदालत के पास जाना है, आपने बीवी से इजाजत लेनी है, तो हर जगह इसी तरह की कानून साजी। तो मेरे नजदीक ये कानून साजी बेहतर करनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छी गालिबन सूरत ये होगी कि आप इस मामले में जो हमारे यहाँ एक फैमिली काउंसिल का या इस तरह का निज़ाम है, मलेशिया में बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप पाबंद करें कि अगर आप इस तरह का इकदाम करना चाहते हैं तो इससे पहले कि आप कोई इकदाम करें आप उसके पास जाए, दोनों मियाँ बीवी इसको जेरे बहस लाएं, अपने मसाइल को देखें। वहां मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि महज इस इकदाम के नतीजे में कि उन दोनों ने इस मौजू को कुछ लोगों की मौजूदगी में जो इसके एक्सपर्ट भी हैं, जिनमें माहरीन नफ्सियात भी हैं, जिनमें मजहबी स्कॉलर भी हैं, जब मिल के तय करना चाहा तो बारहा ऐसा हुआ कि जो वजह थी वो दूर हो गई, असबाब खत्म हो गए, घर बच गया। और अगर फिर सबकी राय यही बनी कि ठीक है ये, यानी जायज है और इस मौके के ऊपर इसका हक बनता है कि ये दूसरी शादी कर ले, तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस भी बड़ी मुख्तलिफ तरीके से हुई। तो हमारे यहाँ आमतौर पर क्या होता है कि बीवी से लिखवा के ले आइए, वो या तो कोई झूठी सी बात लिखवा के ले आते हैं, या उसमें यह है कि 6 महीने छुपा के रख लीजिए, उसके बाद मुकदमा ही नहीं हो सकता। तो कानून सारी को भी बेहतर करना चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे माशरे में औरतों की जहनी तैयारी इसके लिए बिल्कुल नहीं है। मसलन अरब औरतें इसको बड़ी हद तक कबूल कर लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते। शदीद रद्द अमल होता है और रद्द अमल बड़ी हद तक हदूद से मुतजाविज हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि ये मामला हमारी नफ्सियात में शामिल हो चुका है कि हमारी औरतें दूसरी शादी को किसी हाल में कबूल नहीं करती, तो ये जरूरी है कि हम तालीमी इकदाम भी करें और कानून को भी देखें।
बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है, मैं वो लेना चाह रही हूँ। ये शादी के हवाले से है। अदील जाहिद हमसे पूछ रहे हैं जी, क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि शादी से पहले लड़का और लड़की आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ले, मतलब कि एक दूसरे को समझ लें, तब तब भी निकाह के अंदर जाएं।
इस्लाम तो इसरार करेगा इस बात के ऊपर कि आप एक दूसरे को जाने समझे। असल चीज यह है कि उसके लिए तरीका क्या हो। क्या उसका तरीका वो है कि जो मगरबी माशरों में इख्तियार किया गया है वो तो खानदान को बर्बाद कर देने वाला है। उसका तरीका ये है कि आप शाइस्ता और महजब माहौल में अपने वालदैन की मौजूदगी में, अज्जा की मौजूदगी में, या कम से कम ऐसे माहौल में कि यहाँ किसी खराबी का अंदेशा ना हो, वहां मिल बैठे और चीजों को संजीदा तरीके से जोर बहस लाए। यानी ये नहीं है कि पहले मोहब्बत के तमाम अदवार गुजार लिए जाए और उसके बाद फिर शादी की जाए। तो इस्लाम उसकी ममानियत करता है, इसलिए कि इस्लाम में अखलाकी पाकिजगी, बदकारी से इतनाब, लोगों की इस्मत की हिफाजत, ये बड़ी बुनियादी कदरें हैं। और ये कदरें भी इसलिए कायम की गई हैं ताकि निकाह का रिश्ता एक मुहकम रिश्ता हो। इसमें आदमी एक भमरे की सूरत इख्तियार न कर ले, यहाँ चक्का वहां चक्का, बल्कि ये समझ ले कि ये मेरा घर है और मैं ये घर बनाने जा रहा हूँ। तो इस घर को बनाने के लिए जो गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, एक दूसरे को समझा जाएगा, ख्यालात जाने जाएंगे, पाकीजा और अच्छे माहौल में बैठकर वो जरूर होने चाहिए। असल चीज ये है कि आप उस इकदाम, कोई इकदाम करते हैं तो कैसे करते हैं। ये देखिए ना, हमारे यहाँ बड़ी बहस होती है कि जिंस की तालीम देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, यानी बेरहमी सिखाने के लिए देनी चाहिए या इंसान की सेहत तंदुरुस्ती उसके ख्यालात की हिफाजत के लिए देनी चाहिए। तो असल चीज ये है कि आप ये काम करते कैसे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेटिंग का एक पूरा का पूरा इदारा कायम कर ले। इसको महजब शाइस्ता तरीके से जरूर होना चाहिए। बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो मिल बैठे, मौका देना चाहिए कि वो ख्यालात का तबादला करें, मौका देना चाहिए कि वो अपने शरायत हुदूद एक दूसरे को बता दें ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि कल हमने जिंदगी बसर करनी है उसमें क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। बल्कि उन्हें कहना चाहिए कि फला फला चीजों को तुम पहले से डिस्कस कर लो ताकि कल को ये चीज तुम्हारे लिए बायस निजाम।
बिल्कुल सही। एक और सवाल मैं लेना चाह रही हूँ। सलमान काजिम ने हमें लिखा है जी, व्हाट इज सोल मेट एंड व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सोल मेट इन एनी पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी एंड इट हैज एनीथिंग टू डू विद जेंडर और दिस चॉइस इज नॉट अ जेंडर डिपेंडेंट।
नहीं, इसका इसका क्या ताल्लुक है? इंसान के अंदर जो एक रूहानी वजूद है, उस रूहानी वजूद की नशो नमा, उसकी परदाख्त, ये आप जिस वक्त दुनिया में करते हैं तो इसमें आपको बीवी से भी सहारा मिलता है, खानदान से भी मिलता है, आपको अपने अज्जा अकरबा से भी मिलता है, अच्छे दोस्तों से भी मिलता है। और ये वो चीज़ है कि जो एक रूहानी ताल्लुक के तरीके के ऊपर एक मुकद्दस रिश्ता बनती है, तो इसको अपना हदफ बना के आगे।
बिल्कुल सही। वापस अपने टॉपिक पे जो है वो आते हुए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये है कि लेट्स से जो हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की, इसमें जो फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा वाकया हो गया है कि जहां पर एक से ज्यादा बीवी जो है वो आपकी चॉइस बन गई है, तो वहां पर अगर फेयरनेस का भी कॉन्सेप्ट रेगुलेट किया जाए ताकि ये भी मुश्किल बना दिया जाए, अगर आपने भेड़ बकरियां इकट्ठी करनी है तो आप बेशुमार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक शादी करने के भी प्री रेक्विजिट्स हैं, अगर आपके मीन्स नहीं है, आप इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, तो आपको पहली शादी भी के लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप दूसरी जगह पर या तीसरी जगह जा रहे हैं और आपके फाइनेंशियल मीन्स इस तरह से नहीं है, तब भी आई थिंक अगर कुछ इस तरह का जो है वो सेटअप या जो है वो रेगुलेट किया जाए ताकि इससे भी डिस्करेज होकर एक ही मोनोगमस रिलेशनशिप में रहा जाए, तो व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट?
मेरे नजदीक इसीलिए मैंने ये आपको तवज्जो दिलाई है कि आपके यहाँ ऐसी मैरिज काउंसिल होनी चाहिए रियासत की तरफ से, जिनमें आपके इलाके के एल्डर्स शामिल हो, उस मौके पर खानदान के बड़ों को भी बुला लिया जाए। अगर इस तरह का कोई मामला हो तो आदमी पहले मुतमिन करे उनको कि वो शादी क्यों करना चाहता है, उसमें बीवी भी मौजूद होगी, तो तमाम मामला वहां जेर बहस आ जाए। और फिर वहां पूछने का हक है कि भाई कहाँ से खिलाओगे, कहाँ से पिलाओगे, जिम्मेदारियां कैसे पूरी करोगे, कोई तो घर दूसरा बना के देने की पोजीशन में हो या नहीं हो, एक ही घर में रहना है तो कैसे रहेंगे, तो तमाम जितने मामलात हैं वो वहां जेर बहस आ जाए। मैंने आपसे अर्ज किया है कि जब इस तरह के इदारे जिन मुल्कों में बनाए गए हैं वहां जब ये चीज जेर बहस आती है और वो फिर कोई 6 महीने तक गुफ्तगुएं करके कहीं सर्टिफिकेट देते हैं कि अब आप शादी कर सकते हैं, तो उसके दौरान में अक्सर बेशतर लोगों की राय तब्दील हुई।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वापस एक और आपका ओवरऑल कोई भी आप एडवाइस हमारी ऑडियंस, मेल ऑडियंस के लिए, और एक आपकी एडवाइस हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए, अगर आप कुछ देना चाहें तो दैट वुड बी।
जी, मैं यही अर्ज करूंगा कि शादी के इदारे को समझने, अपनी जिम्मेदारियों का सही एहसास करने और इस जिम्मेदार फर्द की हैसियत से जिंदगी बसर करने की अपने आप को भी तरबियत देनी चाहिए और अपने माशरे में भी ऐसे इदारे कायम करने चाहिए जिससे लोगों को ये तरबियत हासिल हो। हमारा माशरा बिल्कुल शुतरे बेमुहार लोगों का माशरा बन के रह गया है। इसमें माशरत, तहजीब, एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुक, रवाबित, सियासी, शहरियत और इस तरह के बहुत से मामलात हैं जिनमें लोग इससे वाकिफ ही नहीं है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या, उनके फराइज क्या। हुकूक का कुछ शऊर तो मौजूदा जमाने ने पैदा किया है लेकिन फराइज और जिम्मेदारियों का शऊर पैदा नहीं किया। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे मजहब ने सबसे बढ़कर जिस चीज की तालीम दी है वो फराइज और जिम्मेदारियां, और हमें अपने फराइज और जिम्मेदारियां समझने चाहिए।
बहुत शुक्रिया जावेद अहमद गामदे साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल व्यूअर्स जिन्होंने हमें अपने कीमती क्वेश्चंस भेजे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
जी, आपका बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।